नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में वंदे मातरम की भावना हर चुनौती से निपटने की क्षमता का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान करेंगी। उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, प्रदेश में यातायात प्रबंधन में पुलिसकर्मियों की दक्षता बढ़ाने के लिए यातायात प्रशिक्षण संस्थान की होगी स्थापना। और प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंचा। ठंड में बढ़ोतरी के मद्देनजर पटना जिले में सभी स्कूलों को सुबह 8 बजे के बाद ही संचालित करने के निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत हर चुनौती पर काबू पाने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की भावना इस शक्ति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कल राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा के दौरान ये बात कही। राष्ट्रीय गीत को 1875 में बंकिम चंद चटर्जी ने लिखा था। श्री मोदी ने कहा कि 1947 में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम देश की स्वाधीनता के लिए स्वाधीनता संग्राम के नेतृत्व में दौरान प्रेरणा का एक स्रोत बना।
भारत हर चुनौतियों को पार करने में सामर्थ्य है। वंदे मातरम के भाव की वो ताकत है। वंदे मातरम ये सिर्फ गीत या भावगीत नहीं, ये हमारे लिए प्रेरणा है। राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों के लिए हमें जकझोरने वाला काम है और इसलिए हमें निरंतर इसको करते रहना होगा। हम आत्मनिर्भर भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं, इसको पूरा कर रहे हैं। वंदे मातरम हमारी प्रेरणा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम का विरोध करने वाली मुस्लिम लीग की राजनीति ने 1937 में गति पकड़ी। श्री मोदी ने वंदे मातरम पर समझौता करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की।
मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा, बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते, लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे, वो तो पूछा ही नहीं न जाना, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी।
इस विशेष चर्चा में भाग लेते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वंदे मातरम देश के वर्तमान, भूत और भविष्य का एक हिस्सा है।
वंदे मातरम हमारा गौरव है, हमारी पहचान है और हमारे संविधान की सबसे ऊंची पुकार है। वंदे मातरम मातृभूमि के प्रति वात्सल्य का अनहद नाद है। वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम के उन अज्ञात और अवर्णित सैनिकों की याद है जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वंदे मातरम हर उस सैनिक को हौसला देता है जो आज भी अपनी मातृभूमि के लिए हर दुश्मन का सामना कर रहा है।
इस चर्चा में भागीदारी करते हुए कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि वंदे मातरम देश की आत्मा है और हर भारतीय इसे गाते हुए गर्व का अनुभव करता है।
आज भी सरहद पर जवान जब दुश्मन का सामना करता है तो उसकी छाती में वंदे मातरम गूंजता है। जब हमारा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जाता है तो उसके दिल की धड़कन में वंदे मातरम होता है। आज भी इस देश के करोड़ों देशवासी राष्ट्र ध्वज को फहराते हुए देखते हैं तो उनकी जबान पर वंदे मातरम आता है।
जनता दल यूनाइटेड के देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि जागृति के लिए एक राष्ट्रीय आह्वान है। तेलुगु देशम पार्टी की डॉक्टर बायरेडी शबरी ने कहा कि वंदे मातरम एक शाश्वत गीत है और ये देश के साहस, आशा और सामूहिक चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। जनता दल यूनाइटेड की लवली आनंद और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राजेश वर्मा सहित कई नेताओं ने चर्चा में भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कुल 66 सदस्यों ने बहस में भाग लिया। उन्होंने कहा कि पूरे देश ने देखा कि कैसे सदन में सभी लोग आधी रात तक वंदे मातरम पर चर्चा के लिए एक साथ आए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सदन में ऐसी रचनात्मक चर्चाएं होती रहेंगी। वहीं राज्यसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर आज चर्चा की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह सदन में चर्चा की शुरुआत करेंगे। इधर लोकसभा में आज चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसमें वर्ष 2023 और 2024 के लिए प्रतिष्ठित कुशल शिल्पकारों को सम्मानित किया जाएगा। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान असाधारण कलात्मक निपुणता के लिए दिया जाता है। इस अवसर पर केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा भी पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे।
राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह के हिस्से के रूप में देश भर के उत्कृष्ट मास्टर शिल्पकारों को सम्मानित करने के लिए वर्ष 2023 और 2024 के लिए हस्तशिल्प पुरस्कार आज प्रदान किए जाएंगे। इन सम्मानों में प्रतिष्ठित शिल्प गुरु पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार शामिल हैं। दोनों वर्षों में 6 कारीगरों को शिल्प गुरु पुरस्कार मिलेंगे, जबकि 18 शिल्पकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे। 2002 में स्थापित शिल्प गुरु पुरस्कार हस्तशिल्प क्षेत्र में सर्वोच्च मान्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन कारीगरों को दिए जाते हैं जिन्होंने भारत की शिल्प परंपराओं को संरक्षित करने में असाधारण कौशल, नवाचार और योगदान का प्रदर्शन किया है। प्रतिवर्ष 8 से 14 दिसंबर तक मनाया जाने वाला राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह देश के कारीगर समुदाय का उत्सव मनाता है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के संसदीय दल की आज नई दिल्ली में बैठक होगी। ये बैठक संसद पुस्तकालय भवन में होगी। लोकसभा और राज्यसभा के सभी एनडीए सदस्यों को बैठक में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि वर्तमान के हवाई संकट के लिए इंडिगो पूरी तरह जिम्मेदार है और वो अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रही है। डीडी न्यूज से विशेष बातचीत में श्री नायडू ने कहा कि सरकार पर कोई दबाव नहीं है और उसने हमेशा सभी एयरलाइनों के साथ समान व्यवहार किया है। उन्होंने घोषणा की कि सरकार इंडिगो के कुल 2,200 हवाई मार्गों को बंद कर और उन्हें अन्य ऑपरेटरों को सौंपकर उसके संचालन को सीमित करने की योजना बना रही है।
और सेफ्टी की जब बात आती है तो सेफ्टी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहती है और कभी कभी हो सकता है सेफ्टी के सेंस में हमें कुछ निर्णय लेना पड़े तो उसका भी रेस्पेक्ट यात्रियों को करना पड़ेगा क्योंकि सेफ्टी इज ऑफ द अटमोस्ट प्रायोरिटी। ये एक जो इंसिडेंट हुआ हमारे एविएशन को या फिर हमारे एविएशन की जो शक्ति है या फिर हमारे पैसेंजर की जो क्षमता है उसको कनेक्ट ना करे, वो एकदम बहुत मजबूत है।
उन्होंने यात्रियों को आश्वासन दिया है कि कोई समस्या आगे नहीं होगी और सरकार उचित और सुरक्षित संचालन के लिए पूरी निगरानी रखेगी। इधर नागरिक उड्डयन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने कहा है कि इंडिगो ने पिछले 24 घंटों के दौरान 1,800 से ज्यादा उड़ानें संचालित की जो उसकी सामान्य स्थिति के करीब है। वहीं इंडिगो ने पटना एयरपोर्ट से आज अपनी 24 उड़ानों को रद्द कर दिया है। इनमें सबसे अधिक पटना से हैदराबाद की उड़ानें शामिल हैं। इसके साथ ही दिल्ली की 3, बेंगलुरु की 2, चेन्नई, गाजियाबाद और कोलकाता की एक एक जोड़ी सेवाएं भी रद्द रहेंगी। यातायात प्रबंधन में पुलिसकर्मियों की दक्षता बढ़ाने के लिए राज्य में यातायात प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना होगी। उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेश की यातायात व्यवस्था दुरुस्त किए जाने को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद ये घोषणा की। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने यातायात प्रबंधन की समीक्षा करते हुए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। श्री चौधरी ने अवैध पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए विभागीय क्रेन के साथ निजी क्रेन लगाने को भी कहा है। उप मुख्यमंत्री ने रेलवे स्टेशनों के बाहर व्यस्त चौराहों और जाम वाली जगहों पर यातायात प्रबंधन के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित करने का भी निर्देश दिया। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में ठंड में बढ़ोतरी हुई है। अधिकांश स्थानों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 7.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ भागलपुर जिले का सबौर सबसे ठंडा स्थान रहा, जबकि पूर्णिया में 400 मीटर सबसे कम दृश्यता रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। वहीं सुबह के समय कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। बढ़ती ठंड के मद्देनजर पटना जिले के सभी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी साकेत रंजन ने बताया कि सभी सरकारी और निजी स्कूल सुबह 8 बजे के बाद ही संचालित किए जाएंगे। इस संबंध में जिले के सभी सरकारी विद्यालय के प्राचार्य, प्रभारी प्राचार्य और निजी विद्यालय के संचालकों को पत्र जारी किया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति प्रमाण पत्रों की जांच ऑनलाइन करेगा। बोर्ड के अनुसार अगले वर्ष से यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। अब तक यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन थी। नई व्यवस्था के तहत नियुक्ता संस्थान या शैक्षणिक संस्थान बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सत्यापन के लिए अनुरोध कर सकेंगे। अनुरोध प्राप्त होने के बाद बोर्ड डिजिटल माध्यम से सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर पुष्टि करेगा। प्रदेश के 31 जिलों में 14 से 18 दिसंबर तक पल्स पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि बांका, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, रोहतास, शेखपुरा और शिवहर जिले को छोड़कर शेष जिलों में 5 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। अररिया जिले के बसमतिया थाना क्षेत्र से स्थानीय पुलिस और एसएसबी की 56वीं बटालियन की टीम ने 20 किलो से अधिक गांजा, नेपाली शराब और हथियार के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत खरसाही से हथियार के साथ वीडियो बनाने के मामले के आरोपी सुनील बहारदार को गिरफ्तार कर लिया गया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, बक्सर के नावानगर औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार होगा। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, कई विभागों के सचिव और 13 जिलों के डीएम बदले। दैनिक भास्कर लिखता है, राज्य का पहला ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पटना में खुलेगा। प्रभात खबर ने लिखा है, जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में अब सुनवाई 10 दिसंबर को। आज अखबार की सुर्खी है, बिहार में बंद चीनी मिलों के बदलेंगे दिन, नई मिलें भी खुलेंगी, नीतीश सरकार का ब्लूप्रिंट तैयार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में वंदे मातरम की भावना हर चुनौती से निपटने की क्षमता का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान करेंगी। नालंदा जिले के नेपुरा गांव निवासी बुनकर कमलेश कुमार भी होंगे सम्मानित। उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, प्रदेश में यातायात प्रबंधन में पुलिस कर्मियों की दक्षता बढ़ाने के लिए यातायात प्रशिक्षण संस्थान की होगी स्थापना। और प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंचा। ठंड में बढ़ोतरी के मद्देनजर पटना जिले में सभी स्कूलों को सुबह 8 बजे के बाद ही संचालित करने के निर्देश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।